तो वाद जब तक है विचार नहीं रहेगा, वाद में क्रोध नहीं। अब मार रूस की और चीन की और तीतो की, तीनों क्रांतियां मार्क्स की कही गई, इनमें कौन सी ऐसी चीज है जो मार्क्स ने कही थी और इन लोगों ने की? मार्क्स ने कहा था कि किसान कभी क्रांतिकारी नहीं बन सकता, वो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता था। रूस में मजदूर किसानों ने मिलकर क्रांति की, किसान क्रांति ही नहीं कर सकते थे, मार्क्सिस्ट डॉग्मा था, पहले सिद्धांत था। चीन में किसानों ने क्रांति, और फिर ये सब कहलाए मार्क्सिस्ट। एक आदमी था, उसका दावा था कि 25 साल से मैं एक ही चाकू बरत रहा हूं, कभी ब्लेड बदलता हूं, कभी हैंडल बदलता हूं, चाकूओं का वही है। वो क्लेम है कांग्रेस वाले कर रहे हैं, गांधी वाले कर रहे हैं, कोई दम है इसमें? सबसे पहले आप सब लोगों के साथ और आप सब लोगों की ओर से मैं महात्मा गांधी और इस देश के अन्य सारे शहीदों के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करना चाहता हूँ। उन सारे शहीदों के प्रति जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राण न्योछावर किए, आहुतियाँ अपने प्राणों की दे दी, उन सारे शहीदों को आज के दिन हम अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। आज मैं देश की आज की जो परिस्थिति है उसके विषय में कुछ बुनियादी बातें आप लोगों की सेवा में निवेदन करने वाला हूं। ये मेरे मत नहीं है, मतलब यह है कि इनका आग्रह मेरे मन में नहीं है। मैं किसी निष्कर्ष पर या निर्णय पर नहीं पहुंचा हूं, और अब तो कहीं किसी संस्था का सदस्य नहीं हूं। सदस्यता को छोड़कर मनुष्यता की तरफ बढ़ रहा हूं, क्योंकि अब मेरी आयु भी समाप्त हो रही है। इसलिए मैं जो कुछ कहूंगा उसे आप मेरा अध्ययन समझिए, और उस अध्ययन के मेरे साथ आप उस अध्ययन को भी सोचते जाइए। ये नहीं कि मैं कहूं और आप सुने, मैं भी सोचूं और मेरे साथ साथ आप भी सोचते चले जाएं, तो एक तरह से यह सह विचार होगा। हमारे देश की मुख्य समस्या को एक रूपक के द्वारा मैं पेश करूंगा। एक गांव में दो भाई रहते थे, नाम आप उनके चाहे तो रख लीजिए। एक दिन शाम को हवा कोरी के लिए निकली, तो अब शगल क्या हो, क्या बात चले, खाली समय था, दिमाग भी वैसे खाली ही था, तो कुछ बात करने लगे। एक मैदान पड़ा हुआ था, बड़ा भाई छोटे भाई से पूछता है कि ये मैदान अगर तुझे मिल जाए तो तू क्या करेगा। तो उसने कहा कि मैं इसमें फुलवारी लगाऊंगा, एक पार्क बनाऊंगा और किस्म किस्म के गुलाब इसमें लगाऊंगा। बड़ा भाई थोड़ा सा झल्लाया, कहने लगा तू तो शौकीन टट्टू है, सिवा गुलछर्रे उड़ाने के कोई बात ही तेरे दिमाग में नहीं आती। तो छोटा भाई थोड़ा सहम गया, पूछने लगा कि हुजूर को मिल जाए तो हुजूर क्या करेंगे। तो बड़े भाई ने कहा मैं इसमें गेहूं बोऊंगा। तो छोटा भाई बोला कि मैं शौकीन टट्टू हूं और आप निकट्टू हैं, सिवा खाने के कोई बात ही आपके दिमाग में नहीं आती, ये क्या करेंगे, गेहूं बोएंगे शहर के बीच में, यहां तो फुलवारी ही लगानी चाहिए। होते होते बात बढ़ गई, चकचक होने लगी। तो बड़ा भाई पूछने लगा तेरे बाप ने भी कभी फुलवारी लगाई थी, और बाप दोनों का एक ही था लेकिन भूल गए। तो छोटा भाई कहने लगा कि मेरे बाप ने नहीं लगाई थी तो आपके दादा ने लगाई थी। इस तरह से दोनों के बीच पार्लियामेंट्री भाषा चल रही, चक चक से हाथापाई हो गई, दोनों के हाथ में लाठी थी, लाठी चल गई, दोनों गिर पड़े, घायल हो गए। एक सयाना आदमी जा रहा था, देखा दोनों को, नजदीक गया, पूछा आखिर माजरा क्या है। तो कुछ नहीं, चकचक हो गई, हाथापाई हो गई, किस बात को लेकर, इस जमीन को लेकर, तुम दोनों हो कौन, सगे भाई हैं। तो ठीक ही है, जमीन का झगड़ा सगे भाइयों में नहीं होगा तो क्या मौसेरे हो मेरे भाइयों में होगा, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन ये तो बताओ कि यह जमीन किसकी है, कि इसका तो होश ही नहीं है, हम तो इस जमीन की विकास की पंचवार्षिक और दशवार्षिक योजनाएं बता रहे थे, हमारे दिमाग में कभी ये बात ही नहीं उठी कि जमीन किसकी। इस देश का ये नक्शा है, जिनके हाथ में ये देश सौंप दिया गया है, जिनको लोग पॉलिटिशियन कहते हैं, उनको ये होश नहीं है कि ये जमीन किसकी, ये देश किसका है। जनता पार्टी का है, कांग्रेस आय का है, कांग्रेस यू का है, मार्क्सिस्टों का है, कम्युनिस्टों का है, मुस्लिम लीग का है, आरएसएस का है, किसका। दो चुनाव में इस देश के नागरिक ने होश दिलाया कि देश किसका है। 1977 में इंदिरा जी को हराकर होश दिलाया, 1980 में इंदिरा जी को जिताकर होश दिलाया। एक साइंस की लड़की अपने पिता से कह रही थी कि बाबूजी वो आदमी आया था आपको पूछ रहा था, कौन सा आदमी? वो जो आपके घोड़ों पर चढ़ता है। सईद की बेटी कह रही थी कि मालिक आया था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि मालिक वो है। वो तो यही समझती थी कि घोड़े सईद के ही हैं, क्योंकि वो उस पर उन पर चढ़ता रहता है और कभी कभी मालिक भी बैठता है। इसलिए वो आदमी आया था जो आपके घोड़ों पर चढ़ा करता है। दिल्ली की कुर्सी पर जो बैठता है वो मुनीम है, मालिक नहीं। और मुनीमों का राज विधवा के जीवन में होता है। इस देश में लोकशाही नहीं है, मुनीमशाही है। और यहां की जनता विधवा स्त्री जैसी है। ये मुख्य समस्या है मित्रों। असर किनका है? प्रेशर ग्रुप्स, कुछ स्वार्थ संगठित हो जाते हैं। ये संगठित स्वार्थ बलवान हो जाते हैं। इनका नाम है प्रेशर ग्रुप्स। समाज में अनेक स्वार्थ होते हैं और वो सब जायज होते हैं। ये नहीं है कि वो अनुपयुक्त होते हैं या गलत होते हैं। वो सारे स्वार्थ ऐसे स्वार्थ हैं जो उपयुक्त होते हैं, आवश्यक भी होते हैं। मजदूरों का संगठन होता है, विद्यार्थियों का होता है, उपभोक्ताओं का होता है, उत्पादकों का होता है। इस तरह से अनेक स्वार्थ संगठित हो जाते हैं। इनमें से कुछ स्वार्थ प्रबल हो जाते हैं और इस संगठित प्रबल स्वार्थों के बीच जो बिचौलिया होता है उसका नाम पॉलिटिशियन। वो इनके बीच सिर्फ मध्यस्थ होता है। तो मैं पॉलिटिशियन की बुराई नहीं कर रहा हूं, सिर्फ उसका वर्णन कर रहा हूं। तो अगर उसके हाथ में देश जाता है तो बाजार दलालों के हाथ में चला जाता है, धर्म पुरोहितों के हाथ में चला जाता है, देवता पुजारियों के हाथ में चला जाता है। ये बुनियादी समस्या है। और मैं आप लोगों के सामने सिर्फ बुनियादी चीज ही रखूंगा, क्योंकि ऊपर ऊपर की बातें तो हमेशा होती ही रहती हैं, हर सभा में होती हैं। उनको आप सुनते भी रहेंगे, कहते भी रहेंगे, सोचते भी रहेंगे। ये क्यों होता है? इसका कारण है पूंजीवादी संदर्भ, कैपिटलिस्ट कॉन्टेक्स्ट। और इस संदर्भ को जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक कोई समस्या हल नहीं होगी। इस संदर्भ को बदलने के लिए भी समस्याओं को लेना पड़ेगा, लेकिन समस्या हल तब तक नहीं होगी जब तक कैपिटलिस्ट कॉन्टेक्स्ट है। कैपिटलिस्ट कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब है? पूंजीवादी संदर्भ में चीज उसको मिलती है जो खरीद सकता है, यह इसका लक्ष्य है। आप सारे शास्त्रीय व्याख्याओं को भूल जाइए। शास्त्रीय व्याख्या मुश्किल चीज को आसान नहीं बनाती, आसान चीज को मुश्किल बनाती है। ये शास्त्री का काम है। जिस चीज को सब लोग समझते हैं उसको ऐसी भाषा में रख दे कि किसी की समझ में ना आए, वो शास्त्री कहलाता है। ये बहुत आसान चीज है। पूंजीवाद में हर चीज का नीलाम होता है, इंसान का नीलाम होता है, हैवान का नीलाम होता है, भगवान का भी नीलाम होता है। हर चीज खरीदने वाले को मिलती है। अब इसको बदलना, और इसको बदलना है लोकतंत्र के संदर्भ में लोकतंत्र की पद्धति से। और किसी सी पद्धति से यह बदला नहीं जाएगा, ये भी बात आप लोगों से मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं। इसको समझाऊंगा बाद में, लेकिन ये आप समझ लीजिए खूब कि जिसको समाज परिवर्तन की आवश्यकता है उसके पराक्रम से ही समाज परिवर्तन होना चाहिए। कल मुझसे सवाल पूछा था, ये मार्क्सवाद से हल होगा या गांधीवाद से हल होगा? तो मैंने यह कहा था कि वाद से कभी हल नहीं होगा, वाद से विवाद ही होता है, समस्या हल कभी नहीं होती। अगर गांधी का कोई वाद है तो फिर गांधी को समाप्त हो जाने दीजिए। मार्क्स का अगर कोई वाद है तो मार्क्स को भी समाप्त हो जाने दें। वाद हमको जीने नहीं देगा, वाद उलझा देता है समस्या को, सुलझाता नहीं। तो फिर क्या करना होगा? मार्क्स और गांधी दोनों का विचार करना होगा। क्या मार्क्स फिजूल रहा? क्या गांधी का जन्म फिजूल हुआ? हरगिज नहीं। मार्क्स ने तीन बातें ऐसी कही हैं जो समाज परिवर्तन के लिए हमेशा काम आएंगी। जब तक क्रांति नहीं हुई है तब तक मार्क्स दुनिया में क्रांति का पहला पैगंबर है। इससे पहले किसी ने यह बातें नहीं कही जो कार्ल मार्क्स ने कही। पहली बात कौन सी कही? टू एंड द डोमिनेशन ऑफ कैपिटल। हम धन की सत्ता को, पूंजी की सत्ता को समाप्त करेंगे। डोमिनेशन आधिपत्य, पूंजी के आधिपत्य को समाप्त करें एक चीज। दूसरी चीज, टू वाइप आउट स्टेट बाउंड्रीज, राज्यों की सीमाओं को पोंछ डालें। इस दुनिया में अनेक राज्य नहीं होंगे। और तीसरी चीज उतनी ही मार्के की कही, टू मेक वॉर इम्पॉसिबल, युद्ध को असंभव कर देंगे। आप सारे धर्मों को खोज लीजिए, किसी धर्म के संस्थापक ने इनमें से एक भी बात नहीं कही। सारे धर्मों ने कहा है गरीबों को दान दो। किसी धर्म ने यह नहीं कहा कि गरीबी और अमीरी नहीं रहेगी, नहीं रहनी चाहिए, नहीं रहेगी। पहली बार मार्क्स करो। लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि राज्य नहीं रहेगा और नहीं रहना चाहिए। युद्ध धर्म युद्ध करो, अन्याय के विरुद्ध युद्ध करो, धर्म के लिए तलवार हो। अग्रसर चतुरो वेदा पुष्कृत सजरंधनो, आगे आगे चार वेद हो, पीछे पीछे धनुष बाण, सुसज्ज धनुष बाण, ये सारे धर्मों ने कहा। लेकिन किसी धर्म ने यह नहीं कहा कि युद्ध दुनिया में नहीं रहना चाहिए, नहीं रहेगा। ये तीन बातें मार्क्स की ऐसी हैं जो क्रांति जब तक समाज में नहीं होगी तब तक ये उपयुक्त होंगे, रेडीमेड होंगे, काम की चीज होगी। इनमें से दो बातों को हमने संभाला। कौन सी दो बातें? पूंजी की सत्ता का अंत करें और दूसरी राज्य को सीमित करते जाएंगे। लेकिन तीसरी बात को हमने नहीं संभाला। बातें कौन सी थी? सत्ता, संपत्ति और शस्त्र, इन तीनों का दास है आज मनुष्य। सत्ता उसको खरीदती, सत्ता उसको दबाती, जोतती, संपत्ति उसको खरीदती और शस्त्र उसको डराता धमकाता। इन तीनों का आज मनुष्य पर आधिपत्य है। इनमें से राज्य का आधिपत्य न रहे और संपत्ति का आधिपत्य न रहे, यहां तक तो हमने मान लिया। लेकिन शस्त्र का भी आधिपत्य न रहे हमने नहीं माना। मार्क्स के बाद दो क्रांतियां हुई, वैसे तो चार हुई, लेकिन दो को आप मार्क्स से पहले की मान लीजिए, अमेरिका और फ्रांस। हमारे इस शताब्दी में दो क्रांतियां हुई, रूस और चीन। रूस में पहली बार क्रांति में किसान आया, मजदूर का सहयोगी बनकर। मार्क्स की कल्पना नहीं थी कि किसान कभी क्रांतिकारी होगा। मार्क्स ने अपने पुस्तकों में उसको ट्रिपुंजिया बताया, आखिरी किला बताया है पूंजीवाद का। लेकिन रूस की क्रांति में आया और चीन की क्रांति में तो माओ ने कहा है कि 10 मार्क अगर क्रांति को देने हो तो 7 किसान को देने हो और 3 दूसरों को। लेकिन उसमें ही एक कमी रह गई, किसान जवान बन गया। मित्रों, जब किसान जवान बन जाता है तो क्रांति किसान की नहीं जवान की होती है। फिर क्रांति औजार की नहीं हथियार की होती है, और क्रांति तो हम औजार की चाहते हैं, हथियार की नहीं। अब गांधी को भूल जाइए, हिंसा अहिंसा को भूल जाइए। एक बात ध्यान में रखिए कि किसी आवश्यक गुण को सिद्धांतवत बनाइए। आवश्यक तत्व जब सिद्धांत बन जाता है तो झगड़े शुरू हो जाते हैं। हजारों बार मैंने किस्सा सुनाया है, पंजाब में मैं गया पठानकोट में, मेरी सभा के अध्यक्ष एक तगड़े पंजाबी सरदार जी थे। अब वो कह रहे हैं, अध्यक्ष अध्यक्ष कह रहा है, हिंदुओं बिंदुओं, सिखों मिखो, मुस्लिमों चुस्लिमों, खामोशी रहो, वरना याद रखो मेरे हाथ में यह डंडा है। और इसके बाद मेरी तरफ मुड़कर कहा, अब आचार्य दादा धर्माधिकारी का अहिंसा पर भाषण हो, अब क्या करूंगा, कैसे भाषण है? आप इसको समझ लीजिए, समझने की चीज है। अहिंसा सिद्धांत बन गई, जीवन में से काबूर हो, जीवन में अहिंसा तब दाखिल होगी जब वो सिद्धांत नहीं बनेगी। सिद्धांतों पर झगड़ा होता है, जीवन झगड़े के लिए नहीं, झगड़ों को रफा करना है। तो किस तरह से हो, क्या चाहते हैं इस देश के प्रमुख पक्षों को, पार्टियों को ले लीजिए। पार्टियां इसलिए कि वो सक्रिय है, नागरिक सक्रिय नहीं। जेपी ने पिछले आंदोलन में कोशिश की कि नागरिक सक्रिय हो। मैं सारे देश में घूमा जेपी की क्रांति की बात समझाने के लिए कि नागरिक हो, तुमको सक्रिय होना है। कोई सामने नहीं आया। नतीजा यह हुआ कि पार्टियों की एक गुदड़ी, जिसका नाम जनता पार्टी था, उसके हाथ में सत्ता गई, उसके हाथ में परिस्थिति गई और जेपी को देखना पड़ा। तो सक्रिय ये पार्टियां हैं, सारी पार्टियों के झंडे ले लीजिए, पार्टियों में के कार्यक्रम में प्रतीक होते हैं, प्रतीक उनके उद्देश्यों की पहचान है, निशानी, संस्कृत में अभिज्ञा कहते हैं, वो चिन्ह है, इशारा है कि हम क्या चाहते हैं। तो कांग्रेस को ले लीजिए, कांग्रेस के झंडे पर क्या है, चरखा। मैं राष्ट्रीय झंडे की बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस के झंडे, समाजवादियों का झंडा ले लीजिए, क्या है? एक हल है और एक यांत्रिक पहिया है, पुली। कम्युनिस्टों का ले लीजिए, लोग कहते हैं कि यह कम्युनिस्ट हिंसावादी है, जो हिंसावादी है वो कम्युनिस्ट हो नहीं सकता, हिंसा को अनिवार्य मानता है। हिंसावादी हिटलर था, फैसिस्ट हिंसावादी होता है, कोई क्रांतिकारी हिंसावादी नहीं होता। आइज़ैक डॉयशर ट्रॉट्स्की का जीवन इसने लिखा है, इस प्रश्न का बहुत सुंदर विवेचन उसने किया। आधुनिक जितने मार्क्सिस्ट हैं, ये इनमें से अधिकतर ट्रॉट्स्कीयंस हैं, ट्रॉट्स्की वाले ज्यादा हैं, रेबिस, डेग्रे, यशिया गवारा वगैरह सब। तो बात यह कह रहा था मैं, हर पार्टी का जो उद्देश्य होता है उसका प्रतीक, उसका झंडा होता है। कांग्रेस का चरखा है, समाजवाद का हल और पहिया है, यांत्रिक पहिया, और कम्युनिस्टों का, अगर वो हिंसावादी हैं तो पिस्तौल होना चाहिए झंडे पर, और कुछ नहीं तो रामचंद्र जी का धनुष बाण या शिवाजी की भवानी दरबार तो होती। लेकिन उनका भी क्या है, हंसिया और हथौड़ा। मित्रों, क्रांति की का उद्देश्य औजार की शान है, हथियार की शान नहीं। अब इसमें हिंसा अहिंसा ये सारे झगड़े पचड़े इनको छोड़ दीजिए, ये व्यर्थ देर हुआ है। हम पहुंचना कहां चाह रहे हैं? पहुंचना वहां चाहते हैं जहां औजार होगा और हथियार नहीं होगा। क्यों? क्रांति जीवन के लिए है, औजार जीवन को बनाता है, हथियार उसको समाप्त करता है। ये तो सीधी बात है। इसीलिए लड़ाइयां होती हैं फिर भी लीगल नेशंस है, यू नो है, लड़ाइयां होती हैं फिर भी डिसआर्ममेंट कॉन्फ्रेंस चल रही है दंभ। लेकिन दंभ में इंगित होता है मनुष्य चाहता क्या है। हिपोक्रेसी इज द ट्रिब्यूट दैट वाइस प्रेस पेस टू वर्च्यू। शैतान अपने नाम पर नहीं चलता, भगवान के नाम पर चलता। बुराई अपने नाम पर दुनिया में नहीं चल सकती, भलाई के नाम पर चले। तूने लड़के को क्यों तमाचा मारा? उसके सुधार के लिए, यानी उसकी जिंदगी के लिए। मरण जीवन के नाम पर चलेगा। तो जिस दिन क्रांतिकारी को से पूछा गया कि तू चाहता क्या है, उस दिन उसे यह कहना पड़ा कि चाहता हूं कि औजार की शान रहे, हथियार की नहीं। नागरिक की शान रहे, सैनिक की नहीं। यही डेमोक्रेसी है। शान सैनिक की नहीं होगी, नागरिक की होगी। सत्ता नागरिक की, सत्ता सैनिक की नहीं। यह हिंसा हिंसा का सवाल नहीं। औजार उसे कहते हैं जो जीवन की उपादेयता और जीवन की सुख जीवन का बढ़ाता है, वो औजार है। जीवन के लिए काम की चीजें जो बनाता है वो औजार, और जो जीवन को समाप्त करता है उसका नाम हथियार। इसलिए टू एंड टू मेक वॉर इम्पॉसिबल, हम युद्ध को असंभव कर देंगे। हमारे देश के लिए मैंने आपसे कहा कि हमारे देश में जितनी पार्टियां हैं उनका प्रतीक क्या है, इंगित क्या है, संकेत क्या है कि दुनिया में औजार रहेंगे हथियार नहीं। दूसरी बात एक और इस सिलसिले में सोचने की है। मैं एक एक चीज को बहुत थोड़े कर रहा हूं, नहीं तो यह भाषण कभी मैं बंद नहीं कर सकूंगा, मैं थक जाऊंगा, आप भी थक जाएंगे। ये तो अध्ययन है, कोई भाषण है नहीं। मैं आपके सामने अध्ययन कर रहा हूं। कल मुझसे पूछा गया था कि आखिर तुमने भी कोई तरीका तो सोचा होगा जिससे मनुष्य को जाना चाहिए। तो मैंने आपसे शुरू भी कह दिया, तरीका मैंने सोचा है लोकतंत्र के संदर्भ में लोकतांत्रिक साधनों से लोगों की क्रांति हो। लोग कौन? वो साधन ही नागरिक जिसके पास सत्ता संपत्ति शस्त्र इन तीनों में से एक भी साधन नहीं, जिसके पास सिर्फ औजार है, सिवा औजार संसार के और कोई साधन नहीं। मित्रों, मैं आपसे निवेदन ये कहना करना चाहता हूं कि औजार ही सबसे शक्तिशाली साधन, और इस बात में हमने औजार वाले को हमेशा भ्रम में रखा। उसे समझाया यह है कि शक्ति लाठी में है, शक्ति थैले में है, शक्ति डंडे में है, शक्ति कुर्सी में है। ये उसको समझाया है। क्या उसको हमने कभी यह समझाया है कि तलवार तेरी बनाई हुई है, तिजोरी तेरी बनाई हुई है, तख्त तेरा बनाया हुआ है? कोई तख्त अपना तख्त नहीं बना सकता। दूसरा है, तलवार से तलवार नहीं बनती, और तिजोरी से तिजोरी नहीं बनती। तिजोरी तख्त तलवार सबको बनाने वाला औजार है, और वही मोहताज है। कैसी उल्टी परिस्थिति है। बर्ट्रैंड रसेल ने एक मजे की बात कही। लोगों ने कहा कि भगवान ने कैसी उल्टी दुनिया बनाई कि औजार वाला तो मोहताज है जो सबको बनाता है, और जो बनाए हुए हैं इसके तख्त तिजोरी तलवार, ये तीनों जोरावर हैं, सिर जोर हैं। तो बर्ट्रैंड रसेल ने कहा, इट सीम्स टू बी दैट द डेविल मेड दिस वर्ल्ड व्हेन गॉड वाज नॉट लुकिंग। ईश्वर की आंख झपक गई तो मौका पाकर शैतान ने ये दुनिया बनाया। ऐसी उल्टी दुनिया बन गई कि बनाने वाले की कोई शान नहीं, बरतने वाले की शान। जूता बनाने वाला मोहताज है, जूता पहनने वाला उतार कर दूसरे के सिर पर मारता है। वो 100 रुपए का जूता पहनता है, क्यों पहनता है? खरीदने वाले की दुनिया है, बनाने वाले की दुनिया नहीं। क्रांति बनाने वाले की दुनिया होगी, खरीदने वाले की और छीनने वाले की नहीं। यह क्रांति। मैं जितने आसान शब्दों में हो सकता है उतने आसान शब्दों में आपके